हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रिया और अकरम अस्पताल पहुँच चुके थे। वहाँ अरहम को देखकर रिया का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया था। उसने गुस्से में अरहम पर चाकू से वार कर दिया और चाकू उसके बाजू पर बहुत गहरा घाव लगा गया। दूसरी ओर ज़ोया की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने अबीर को बताया, आपकी पत्नी के साथ ज़्यादा शारीरिक संबंध होने की वजह से उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो गई है, इसलिए उनका बच्चा ज़्यादा दिन उनकी कोख में नहीं रह पाएगा। इसलिए उनके पेट में पल रहे बच्चे को सातवें महीने में ही डिलीवर कराना होगा। ये सुनते ही अबीर का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया। अबीर को बार बार अकरम द्वारा बताई गई हर बात याद आने लगी। अबीर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, मानो उनमें खून उतर आया हो। ज़ोया, जो बहुत पहले ही होश में आ गई थी, उसने डॉक्टर की हर बात सुन ली थी। जल्दी ही ज़ोया होश में बेहोशी का नाटक करने लगी और अबीर के चिंतापूर्ण शब्द सुनने लगी। ज़ोया सोच रही थी कि जिंदगी ने उसके साथ कितना अजीब खेल खेला था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ से कहाँ ले आई थी। ज़ोया ने अपनी ज़िंदगी से अब किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने सोच लिया था कि वो कैसे न कैसे अरमान, अरहम और राजवीर को मार डालेगी और अपने बच्चे को अकरम और रिया के हवाले करके खुद मौत को गले लगा लेगी। उसने जीने की उम्मीद कब की छोड़ रखी थी। इतनी तकलीफ़ों के बाद भला कोई कैसे ज़िंदा रह सकता था। लेकिन अब अबीर के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद ज़ोया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर इसी बीच अबीर डॉक्टर को बुला लाया और डॉक्टर ज़ोया को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए ज़ोया जल्दी से होश में आ गई और सबकी ओर देखने लगी। ज़ोया को होश में आया देख अबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो किसी की परवाह किए बिना ज़ोया के गले लग गया। तभी एक डॉक्टर वहां आई और उसने अबीर को इशारे से अपने पास बुलाया। हालांकि उसे अबीर राठौड़ को बुलाते हुए डर लग रहा था, लेकिन बात ऐसी थी कि अबीर को बुलाना ही पड़ा। जैसे ही अबीर उसके पास गया, डॉक्टर ने पूरे 20 मिनट अबीर से ज़ोया को लेकर बात की। ज़ोया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है जो काफ़ी सीरियस है। तभी अबीर ज़ोया के पास गया और उसे सहारा देकर उठाने लगा। ज़ोया ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने उसकी कोशिश को नज़रअंदाज किया और उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाकर गाड़ी तक ले आया। उसके आदमी ज़ोया की दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए रुक गए थे। अबीर ने बड़े प्यार से ज़ोया को संभाला हुआ था। ज़ोया उसकी गोद से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अबीर की मज़बूत बाहों में से निकल नहीं पाई। ज़ोया ने अभी तक अबीर से एक भी शब्द नहीं कहा था, वो बस खामोश थी। हालांकि ज़ोया की खामोशी अबीर को खटक रही थी, लेकिन वो भी कुछ सोचकर चुप था। जल्दी ही अबीर की गाड़ी ठाकुर मेंशन में पहुँच चुकी थी। जैसे ही ज़ोया अबीर की गोद में घर के अंदर गई, हॉल में ही उन्हें अकरम और रिया मिल गए। अकरम और रिया हॉस्पिटल से घर लौट आए थे और आते ही उन्हें खबर मिल गई थी कि ज़ोया की तबीयत खराब होने के कारण अबीर साहब उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। रिया ने जैसे ही ज़ोया को देखा, वो उसके गले लग गई। और इतना ही नहीं, गले लगते ही रिया ने ज़ोया को बताया कि वो अरहम के बाजू पर कैंची घुसाकर आई है। रिया के मुंह से ये सुनते ही ज़ोया को काफ़ी सुकून मिला और वो सोचने लगी कि चलो, अरहम पर हमला करके तो कम से कम रिया के अंदर का डर तो खत्म हुआ होगा। तब ज़ोया अकरम के पास आई और बोली, अकरम भाई, आपसे मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। आप जानते हैं अकरम भाई, मेरी ज़िंदगी में आए मर्दों ने मुझे दुख के अलावा कभी कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप पहले ऐसे मर्द मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने बिना वजह एक मरती हुई लड़की को ज़िंदगी दे दी, जिसकी इस समाज में कहीं ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत थी तो उन लोगों को, ताकि वे मेरे जिस्म को नोच कर अपनी हवस का शिकार बनाते रहें। मैंने सोचा था उन लोगों को उनके किए की सज़ा देकर पेट में पल रहे बच्चे को आप दोनों के हवाले करके खुद मौत को गले लगा लूँगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में फिर ये मोहब्बत नाम का फंदा लेकर अबीर साहब आ गए, जिन्हें लगता है वे जो चाहें जब चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। और अब देखो, इन्होंने बिना मेरी मर्ज़ी जाने मुझसे शादी कर ली और मुझसे पूछना तो दूर, बताना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा, ज़ोया ने अबीर की ओर शिकवा करते हुए कहा। अबीर अपना दिल थाम कर ज़ोया की सारी बातें सुन रहा था। तब अकरम बोला, ज़ोया बेटा, मेरी बात सुनो, अबीर जी वाकई तुमसे मोहब्बत करते हैं। ज़ोया, मोहब्बत? कैसी मोहब्बत भाई, कोई मोहब्बत नहीं होती है। अगर कुछ होता है तो वो है जिस्म की हवस, जिस्म की भूख। होती है मोहब्बत, आप दोनों ने की है, जो इतना सब कुछ होते हुए भी साथ हैं। कहाँ हम लोग खुशी खुशी आप दोनों की शादी की तैयारी कर रहे थे, और कहाँ अब मेरी शादी हो गई, वो भी मुझे बिना बताए, और इन सब चक्करों में आप दोनों की शादी होते होते रह गई। ज़ोया ने अबीर की ओर शिकवा करते हुए कहा। अबीर अपना दिल थाम कर ज़ोया की सारी बातें सुन रहा था। तब अकरम बोला, ज़ोया बेटा, मेरी बात सुनो, अबीर जी वाकई तुमसे मोहब्बत करते हैं। ज़ोया, मोहब्बत? कैसी मोहब्बत भाई, कोई मोहब्बत नहीं होती है। अगर कुछ होता है तो वो है जिस्म की हवस, जिस्म की भूख। होती है मोहब्बत, आप दोनों ने की है, जो इतना सब कुछ होते हुए भी साथ हैं। कहाँ हम लोग खुशी खुशी आप दोनों की शादी की तैयारी कर रहे थे, और कहाँ अब मेरी शादी हो गई, वो भी मुझे बिना बताए, और इन सब चक्करों में आप दोनों की शादी होते होते रह गई। ज़ोया ने रिया के मन की बात बोल दी। रिया अकरम से शादी करने के लिए बेहद बेचैन थी, लेकिन इन सब के बीच उसकी शादी नहीं हो पाई, केवल हल्दी होकर रह गई। हालांकि रिया और अकरम कितनी बार मियां बीवी वाला रिश्ता बना चुके थे, लेकिन रिया को शादी ना होने की एक कसक सी उसके दिल में उभर जाती थी। आज ज़ोया ने ये बात बोलकर काफी हद तक रिया के मन का बोझ हल्का कर दिया था। तभी अकरम रिया और ज़ोया के पास गया और बोला, हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, तुम क्यों परेशान हो हमारी शादी को लेकर। तभी अबीर की आवाज़ वहाँ गूंजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तीनों चौंक कर अबीर की ओर देखने लगे। तब ज़ोया ने तल्ख लहजे में अबीर से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, अकरम भाई और रिया को शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है? ज़ोया ने काफ़ी ज़्यादा तल्ख लहजे में कहा। तब अबीर, जी हाँ मिसेज़ राठौड़, मैंने यही कहा है। इस बार अकरम को भी अबीर की बात समझ नहीं आई और वो बोला, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा अबीर साहब। तब अबीर, वो दरअसल अकरम जी, कल जब मेरी और ज़ोया की शादी हुई, तब आपकी और रिया जी की भी शादी हो गई थी, याद कीजिए, आप दोनों ने भी साइन किए थे। ये सुनते ही रिया जहाँ खेल उठी, वहीं ज़ोया और अकरम का शौक के मारे बुरा हाल था। तब रिया, इसका मतलब अब हम एक्चुअल में मियाँ बीवी हैं। तब अबीर, जी हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी शादी और मेरी शादी के जो गवाह हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस शहर के पुलिस कमिश्नर हैं। क्या ये एक और शॉकिंग न्यूज़ थी उन लोगों के लिए? रिया तो खुशी के मारे पागल हो रही थी और वो दौड़कर अकरम की बाहों में समा गई। अकरम भी काफ़ी खुश था और उसने रिया के कान में कुछ कहा। तब रिया शर्मा कर अंदर भाग गई और अकरम भी उसके पीछे पीछे चला गया। अबीर और ज़ोया समझ गए थे कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तब अबीर ज़ोया के पास आया और बोला, वो दोनों तो गए अपने सुहागरात मनाने, तो क्या हम लोग भी चलें? ज़ोया ने उसे घूर कर देखा और वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अबीर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा, फिर उसे कुछ याद आया और वो अपने काम पर जुट गया। दूसरी ओर अगली सुबह जैसे ही मेहर की आँख खुली, वो जल्दी से उठ बैठी। कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे एक एक करके याद आने लगा। मेहर ने अपने आप को अच्छी तरह से आईने में देखा और उसके जिस्म पर अनगिनत लव बाइट्स उसे कल रात का अफसाना याद दिला रही थीं। मेहर के चेहरे पर इतना सा भी पछतावा नहीं था, उल्टा कल रात राजवीर का बर्ताव देखने के बाद उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था।
वो जल्दी उठी, उसे अपने भाई के केस की प्रोग्रेस भी देखनी थी, सो वो उठी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई और नहाने लगी। कुछ ही देर में वो नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर एक और हॉट ड्रेस पहनने लगी। आज वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उसने एक जीन्स और उसके साथ बैक कट टॉप पहना था, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश और मॉडल लग रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए हॉल में आई, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। तभी मेहर ने देखा कि राजवीर नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ आराम से नाश्ता कर रहा था। मेहर को ये बात बड़ी ही अजीब लगी, लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए वो उसके ठीक सामने जा बैठी। मेहर को देखकर राजवीर काफी हैरान था। राजवीर की नजरें मेहर पर से हटी ही नहीं रही थीं, न चाहे हुए भी मेहर को देख ही रहा था। मेहर उसकी नजरें भांप चुकी थी और वो जानबूझकर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करने लगी। मेहर ने जल्दी से सामने पड़ा जूस पिया और फिर फ्रूट कस्टर्ड खाने लगी और उसने खाते खाते एक हाथ से तेजा को कॉल लगा दिया और बोली, तेजा मैं बाहर आ रही हूँ, तब तक तुम गाड़ी रेडी रखो। मेहर का एटीट्यूड देखकर राजवीर का हैरानी के मारे बुरा हाल था। एकाएक राजवीर का सब्र जवाब दे गया और राजवीर ने कांच की एक प्लेट उठाकर मेहर के मुंह पर दे मारी, जिससे मेहर कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। राजवीर ने डंडा जैसा कुछ उठा लिया था उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसका हाथ पीछे से किसी ने पकड़ लिया।